आज राजवंश एम्पायर के न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस एरिया का माहौल काफी गर्म था। नक्श को प्रमोशन मिल गया था और उसने रोहन को धमकी दी थी कि उसे मिले प्रोजेक्ट को उसे 2 दिन में पूरा करना था। रोहन गुस्सा था और उसका गुस्सा सब पर उतर रहा था। लक्ष्य लेट आया था और रोहन के डर से जल्दी जल्दी काम करने लगा। जैसे ही उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसे इशिका का मेल मिला। लक्ष्य अपने डेस्कटॉप को हैरानी से देख रहा था। वो धीरे से बोला, सीरियसली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इशिका ने ये कर लिया है। रोहन ने अपनी स्टडी अब्रॉड से की है। वो एक PhD किया हुआ इंटेलिजेंट बंदा है और इशिका सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट, फिर भी उसने इतनी आसानी से इसे कर लिया। लक्ष्य को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका मेन इशू कर सकती थी। प्रोफेसर मिलर उसकी तारीफ जरूर करते थे, पर इतनी भी नहीं कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो एक PhD किया हुआ इंसान नहीं कर सका। लक्ष्य ने मेल पर क्लिक किया और उसे खोलने लगा। तभी रोहन वहां आया। उसने उसकी टेबल पर कुछ पेपर्स पटकते हुए कहा, अभी के अभी सबको मीटिंग में बुलाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। लक्ष्य ने उसकी बात को सुना तो था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी नजरें एकटक डेस्कटॉप स्क्रीन को खोल रही थीं। उसकी इस हरकत पर रोहन को और गुस्सा आया। पहले ही वो नक्श की वजह से परेशान था। रोहन लक्ष्य पर चिल्लाकर बोला, अपने कान में रुई डालकर बैठे हो क्या, जो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? चुपचाप खड़े और मीटिंग रूम में आओ। लक्ष्य ने देखा मेल खाली था, स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जल्दी से खड़ा हुआ और नज़र झुकाकर बोला, हाँ आ रहा हूँ सर, बस 1 मिनट दीजिए। लक्ष्य को लगा कि इशिका के उस मेन इशू के सॉल्व करने के बाद रोहन की परेशानी कम हो जाएगी, पर स्क्रीन को खाली देखकर वो काफ़ी निराश हुआ। उसने मन ही मन कहा, ज़रूर उसने गलती से मेल भेज दिया होगा, हमारी तरह वो भी प्रेशर में आ गई होगी। जल्दबाजी में लक्ष्य ने स्क्रीन को चालू ही छोड़ दिया था। वो रोहन के पीछे जा रहा था। जैसे जैसे रोहन लक्ष्य स्क्रीन से दूर हुआ, स्क्रीन बफरिंग करना बंद हो गई थी। टेक्निकल इशू की वजह से मेल बफर कर रहा था और ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा था। लक्ष्य के वहां से हटते ही मेल सामने आ गया था। इशिका ने सच में मेन इशू को सॉल्व कर दिया था। कुछ ही देर में रोहन के अंडर काम करने वाले सारे टीम मेंबर्स मीटिंग रूम के अंदर मौजूद थे। रोहन ने उन सबको थोड़ी देर पहले हुई मीटिंग के बारे में बताया, जहां नक्श को प्रमोशन मिला था। हालांकि उसने उन सबसे इस बात का जिक्र नहीं किया था कि नक्श इशिका को अपनी टीम में चाहता है। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं 2 दिन में उस इशू को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन करने वाला हूँ। जैसे ही रोहन ने रिजाइन करने का कहा, वहां एक सन्नाटा छा गया। हालांकि रोहन एक स्ट्रिक्ट बॉस था, लेकिन सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सब एक एक करके आगे आने लगे। एक लड़की बोली, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। आप हमें काम बताइए, हम अपने दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। ये सही कह रही है, हम अगले 2 दिन तक लंच भी नहीं करेंगे और रात को सोएंगे भी नहीं। आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। सभी रोहन का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे। अपनी टीम को देखकर रोहन को प्राउड फील हो रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और उन सबको काम समझा दिया था। रोहन ने उन सबके काम को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उन सबको काम देने के बाद अचानक रोहन ने महसूस किया इशिका वहां नहीं थी। उसने भौहें उठाकर लक्ष्य से पूछा, इशिका कहाँ है, क्या हुआ, अब तक काम पर नहीं आई है? लक्ष्य खुद लेट आया था तो वो इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, सर वो सुबह जल्दी ही आ गई थी, उसने अपनी एंट्री की और फिर सीधे लाइब्रेरी में चली गई। रोहन ने गुस्से में मुठ्ठियां बांध ली थी। उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि वो इशिका को नक्श से बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था और इशिका थी जो उसके मना करने के बावजूद इधर उधर घूम रही थी। रोहन अपने गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि एक लड़की बोली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम यहाँ इतनी मुसीबत में है और वो बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास कर रही है, अगर वो हमारा साथ देती तो उसे काफी एक्सपीरियंस मिलता, शी इज वेरी थैंकलेस। हालांकि लक्ष्य को भी इशिका से इस बात की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने सबके सामने उसका फेवर करते हुए कहा, वो बस एक अंडर ग्रेजुएट है और हमारा काम बहुत मुश्किल है, उसने कोशिश की थी लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, तो बेचारी क्या करे, हम एक टीम है और सुख दुख में साथ रहते हैं, उससे काम नहीं हो रहा था तो हमारी खुशी के लिए ही इस टीम के साथ रह लेती, उसे सैलरी मिल रही है फिर भी वो इधर उधर घूमकर टाइम खराब कर रही है, ये क्या सही है, दूसरे एम्प्लॉय ने गुस्से में जवाब दिया। एक लड़की उसका साथ देते हुए बोली, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा कौन करता है, मुझे नहीं पता था कि हमारी टीम में एक कामचोर लड़की को शामिल किया जाएगा। इन सब में रोहन बिल्कुल शांत खड़ा था। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा था कि इशिका एक थैंकलेस लड़की है। रोहन की उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद वो उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई। उन लोगों का ध्यान इशिका से हटाने के लिए रोहन ने कहा, अगर बातें करने के बजाय हम काम पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा, वो काम नहीं कर रही है पर हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हो गाइस, 2 दिनों बाद मैं इस्तीफा दे दूं? बिल्कुल नहीं रोहन, हम ये नहीं होने देंगे, एक सीनियर एम्प्लॉय ने कहा और उन सबको काम पर भेजने लगी। फिलहाल रोहन के लिए इशिका पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी मेन इशू पर काम करना था। उसने सबको काम लगा दिया था और खुद भी उसी में लग गया। वहीं ऊपर अभिमन्यु के फ्लोर पर पृथ्वी अभिमन्यु के सामने खड़ा था। वो इशिका के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। R&D डिपार्टमेंट में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उस बारे में भी उसे पता था। वो अभिमन्यु से इशिका मल्लिका की शिकायत लगाने के लिए आया था। पृथ्वी सख्त अंदाज में बोला, वहाँ रोहन पागलों की तरह काम कर रहा है। उसकी सारी टीम इतनी डेडिकेटेड है ताकि रोहन को रिजाइन ना करना पड़े, और हमारी मिस सिंघानिया आराम से लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही हैं। वो लोग सही कहते हैं, वो एक थैंकलेस लड़की है जो दिखने में खूबसूरत है। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाकर कहा, क्या वो सुबह से उस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही है? हाँ, आते ही उसने अपनी एंट्री की और फिर सीधे लाइब्रेरी में चली गई। लंच टाइम में लंच भी नहीं करने गई, वो किताबें पढ़ने में बिजी है, पृथ्वी ने बताया। कौन सी किताब? अभिमन्यु ने आगे पूछा। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, शायद न्यू एनर्जी से रिलेटेड कोई बुक होगी, पृथ्वी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे नजर रख रहे हो तुम उसके ऊपर? हालांकि अभिमन्यु ने पृथ्वी को ये काम ऐसे ही दिया था, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो वो खोए हुए अंदाज में बोला, जब से उसने राजवंश एम्पायर ज्वाइन किया है वो लाइब्रेरी में ही दिखाई दी है। इसका मतलब उसका राजवंश एम्पायर ज्वाइन करने का मकसद यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अभिमन्यु के तेज दिमाग ने जल्द ही इशिका के इरादों को समझ लिया था। इशिका कौन सी किताब पढ़ रही थी ये उन सबके लिए जानना बेहद जरूरी हो गया था। पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा। पृथ्वी बोल रहा था उतने में अभिमन्यु खड़ा भी हो गया था। उसने अपना ब्लेजर पहना और तेजी से बाहर जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु खुद इशिका के पास लाइब्रेरी में जा रहा था। उसका गुस्सा देखकर पृथ्वी ने धीरे से कहा, इस लड़की की वजह से सर मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं। पता नहीं किस मकसद से ये राजवंश एम्पायर की लाइब्रेरी खंगाल रही है।
वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसने इशिका को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पाया। इशिका वहां खड़ी ऊपर शेल्फ में लगी किताबों को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बुक पर गई तो उसने जल्दी से एक सीढ़ी को वहां लगाया और उस पर चढ़कर उस बुक को उतारने लगी। अभिमन्यु गौर से उसी को देख रहा था। इशिका ने बुक लेने के लिए जब अपना हाथ ऊपर किया तो उसका टॉप कमर से काफ़ी ऊपर चला गया था। उसकी कमर पतली और गोरी थी। अचानक उसे देखकर अभिमन्यु के मुँह से निकला, ये इतनी छोटी सी क्यों है? इसे आराम से मैं अपने हाथों में पकड़ सकता हूँ। अचानक अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है, तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो इशिका के बारे में ये सब नहीं सोचना चाहता था, पर फिर भी उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आए। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और इशिका से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं इशिका को जो बुक चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। किताब मिलने की खुशी में इशिका ये भूल गई थी कि वो इस वक्त सीढ़ी पर चढ़ी हुई है। वो एक्साइटमेंट में दूसरी तरफ पलटी और उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिरने के ख्याल से ही इशिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसे बिल्कुल सावधानी से पकड़ रखा था। इशिका ने आंखें खोली तो अभिमन्यु ने उसे थाम रखा था और उसके हाथ इशिका की कमर पर थे। इशिका के हाथ भी अभिमन्यु के सीने को जा लगे थे। एक पल के लिए उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ। कुछ पल के लिए वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। इशिका का बैलेंस बनाने के लिए अभिमन्यु के हाथ उसकी कमर पर मूव हो रहे थे, जिससे इशिका ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद की और तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर राजवंश, वो मेरा ध्यान नहीं था तो मैं गिरने वाली थी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका अगर कुछ पल और अभिमन्यु के पास रुकती तो वो शर्मिंदगी से वहीं गिर जाती। इशिका जल्दी से दूसरी तरफ जाने लगी। वहीं अभिमन्यु का ध्यान अभी भी अपने हाथों की तरफ था, जिसमें थोड़ी देर पहले उसने इशिका को पकड़ रखा था। वो मन ही मन बोला, ये सच में छोटी सी है और मैं इसे आराम से थाम सकता हूँ। थोड़ी देर पहले जो भी ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था उसके बाद से उन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। इशिका अभिमन्यु का सामना नहीं करना चाहती थी, एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो उसकी आंखों और उसकी खुशबू में खो गई थी। अभिमन्यु उसी की तरफ आ रहा था। ये देखकर इशिका ने जल्दी से उस किताब को किसी दूसरी सेल्फ की ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर किसी की नज़र न जाए। वो जल्दी से अभिमन्यु की तरफ पलट कर बोली, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है मिस्टर राजवंश, मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। इशिका जल्दी से दौड़ते हुए वहां से चली गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इशिका ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मेरी हार्टबीट इतनी हाई क्यों है? बोलते हुए अचानक इशिका का हाथ अपनी कमर पर जा लगा, जहां थोड़ी देर पहले अभिमन्यु ने उसे पकड़ा था। इशिका ने खुद को वहां पर जोर से पिंच करके कहा, ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ इशिका सिंघानिया। इशिका नॉर्मल लड़कियों से थोड़ी अलग थी, वो काफी प्रैक्टिकल थी और उसने तुरंत ही अपने इस नए इमोशन को कंट्रोल कर लिया था। इशिका जल्द ही R&D डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उसने देखा सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। पहले ऐसा नहीं था, वो सब उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे। उनके चेहरे देखकर इशिका ने अपने मन में कहा, ये अचानक ये सब मुझे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? जरूर इन्हें ज्यादा काम दिया होगा तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। इशिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इशिका वापस अपनी क्यूबिकल में जाकर बैठ गई थी। उसने थोड़ी देर वहां बैठकर काम करने का दिखावा किया और वापस लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। आखिर उसे वो बुक जो लेनी थी जो उसने छुपाई थी। इशिका जैसे ही क्यूबिकल से बाहर निकली, लक्ष्य ने उसे देखा तो तुरंत पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? वो लाइब्रेरी में मुझे कुछ काम है, इशिका ने जवाब दिया। अभी मत जाओ, ऑफिस खत्म होने के थोड़ी देर पहले चली जाना, लक्ष्य ने उसे टोकते हुए कहा। और वो क्यों? इशिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वो आगे बोली, रोहन सर ने मुझे कहा था कि काम हो जाने के बाद मैं लाइब्रेरी में जा सकती हूँ, अभी मेरे करने लायक कुछ नहीं है। इशिका की बात सुनकर लक्ष्य ने तुरंत इधर उधर देखा। वो जानता था कि इशिका की इस बात को सबने अजीब तरीके से लिया था, और वही हुआ था। सब इशिका की तरफ अजीब नजरों से घूर रहे थे। लक्ष्य नहीं चाहता था कि इशिका की ऑफिस में इमेज खराब हो, उसने उसे काफी शांति से समझाते हुए कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि काम हो जाने के बाद तुम जा सकती हो। अच्छा, मैंने तुम्हें वीकेंड पर जो काम दिया था वो तुमने किया या नहीं? हाँ मैंने कर दिया है, इशिका ने बेपरवाही से कहा। मैं जानता हूँ वो थोड़ा मुश्किल है और एक रात में नहीं हो सकता, तुम उसे बीच में भी नहीं छोड़ सकती हो। ऐसा करो, उस पर काम करने की कोशिश करो, लक्ष्य ने जवाब दिया। इशिका ने गहरी सांस दी और थोड़ी तेज आवाज में कहा, देखो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा मैंने उन्हें कर दिया है, मैंने तुम्हें मेल भेजा तो था। लेकिन वो तो एक खाली ईमेल था, लक्ष्य ने जवाब दिया। फिर वो दौड़कर अपने डेस्कटॉप की तरफ गया और मेल को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मेल अब इस बार पूरा खुला हुआ था। चलो भाई, अब तो इन्हें यकीन हो गया कि इशिका दिन भर इधर उधर घूमकर टाइम खराब नहीं करती है। देखते हैं बुराई करने वाले लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। उनका रिस्पॉन्स अगले पार्ट में आएगा, तब तक आप इस पार्ट पर अपना रिस्पॉन्स दे दें।